نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لگتا دونوں چیزیں دور ہو گئی ہیں کیسے ہیں آپ لوگ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر اور میرا دل ہے کہ آپ کا آج کا دن ایسا گزرے کہ اگر آپ نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو آپ کو یونیورسٹی یاد آ جائے کالج سے پڑھا ہے تو کالج یاد آ جائے اسکول سے پڑھا تو اسکول آج کا دن بالکل تفکرات کو ذہن سے نکال کر گھر میں کیا ہو رہا ہے بچے کیا کر رہے ہیں میاں کیا کرنے تو نہیں لگ گئے اور یہ تو نہیں ہو گیا وہ سب چھوڑ کر آج بالکل اپنا دل اور دماغ تھوڑے گھنٹوں کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیتے ہیں ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے جو گو کہ آپ کو اس کے نام سے تو بہت مشکل لگا ہوگا فریضہ اقامت دین مشکل لفظ ہے اسی لیے آج وقت زیادہ لیا آپ سے تاکہ اس مشکل کو آسان کریں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ مختلف مقامات پہ ہے یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بات کریں گے لیکن اللہ کے کلام کو سننے بغیر بات شروع نہیں ہوتی تو آپ سب کے سامنے فولڈرز بھی ہیں اس میں پیپر پین بھی ہوں گے یقیناً آپ لوگ کوشش کیجئے لکھیں آپ کا ساتھ میرا ہوگا اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں شام تک بھی بولتی رہوں گی اور اگر آپ نہیں سنیں گے کھانا پینا چاہیں گے فون پہ کچھ میسج ٹیکسٹنگ ہوگی تو میری بھی توجہ بٹے گی تو بس اس وقت سمجھیں کہ سیل فون ہے ہی نہیں ایجاد ہی نہیں ہوا اور دوسری بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نہ تو صدر ہے نہ وزیر کہ چند منٹ اگر وہ سیل فون آف کر دے تو ملک خطرے میں ہے جہاز میں بیٹھتے کیا کہتے ہیں کہ اب اپنے سارے الیکٹرانکس بند کر دیں کیونکہ جہاز کے نیویگیشن میں پرابلم آئے گا تو وہ تو جہاز کا نیویگیشن ہے نا ایک ہماری سوچ کا نیویگیشن ہوتا ہے ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے نا تو ہماری سوچ کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ سب ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے آپ لوگ اور ہم سب اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں آپ کے لیے تلاوت پلے کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے ہمارے آج کے سبق کی چند چیدہ چیدہ آیات ہیں سب سے پہلا ہمارا آج کے لیسن میں جو آئے گی وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 ہے آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم سے کیا کہتی ہیں قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس بے شک تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی دو لفظ ہیں کنتم خیر امت یہاں ایک چھوٹا سا پاز لگا سکتے ہیں آپ لوگ کوما دے لیں سوچ کو یہاں روک لیں اس ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں دو باتوں کی خبر ہے ایک کیا ہے کہ کنتم خیر امت او مسلمانوں تم بہترین امت ہو اب اس پہ فخر کرنا ہے تکبر کرنا ہے نہیں ابھی اس کی آگے کنڈیشنز بتائی جائیں گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ بہتری مشروط ہے شرائط کے ساتھ ہے کنڈیشنز کے ساتھ ہے اس کو ہم دیکھیں گے ابھی دوسری بات اخرجت للناس تم اس دنیا میں لوگوں کے لیے نکالے گئے آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی اس ایک آیت اور چند اور آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی امتیازی حیثیت کیا ہے دوسرے لفظ میں آپ کہہ لیں کہ ہم کون ہیں کبھی آپ نے کسی کو رشتہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پہلی پہلی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ذرا پتہ کرو وہ کون لوگ ہیں خاندانی ہے یا ایسے ہی ہیں اپنے ہیں بیگانے ہیں کس دل کے ہیں بیکار ہیں پوچھتے نا سو باتیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک جوڑ لگتا ہے ایک گھر کا جوڑ دوسرے کے ساتھ لگتا ہے ایک کی لڑکی ہوتی ہے تو ایک کا لڑکا ہوتا ہے बगैर एक दूसरे को जाने पूछे कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ता। तो वहां तो सिर्फ दो घरों का जोड़ है, एक लड़के और लड़की की जिंदगी का मामला है कमोबेश। लेकिन यहां एक जोड़ है जो बंदे और रब के बीच का है। उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने जो शान दी, जो उसको मुकाम दिया, उसको सूरत अल बकरा में फरमाया, 143 है सूरत बकरा की आयत, जिसमें अल्लाह सुभान ताला फरमाते हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतं वसता, और इसी तरह हमने तुमको उम्मते वसत बनाया। क्यों बनाया? लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाही देने वाले बन जाओ। और वयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बने। बस ये है उम्मते मुस्लिमा। शायद आप समझे, शायद आप नहीं समझे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे और आपको एक कनेक्टर बना दिया। होता क्या था कि पहले दौर में अंबिया कराम आते थे जो अल्लाह ताला का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाते थे। ये सिलसिला चलता ही रहा। और ये वादा था जिसको अल्लाह ने वफा किया। किससे किया था ये वादा? आदम और हव्वा से। कब किया था? जब जन्नत से निकाले जाने के बाद उन्होंने रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमसे भूल हो गई, हमने जुल्म कर लिया, अब अगर तू हमें माफ करके हम पे रहम नहीं करेगा, इशारा क्या था कि अब वापस जन्नत में ले जा, जो दिखा दी है तूने, जो इतनी खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा, नहीं अब नहीं, पहले बात और थी, पहले मैंने आपको जस्ट फॉर ऑनर जन्नत में दाखिल कर दिया था, एक सैंपल था, एक ट्यूटोरियल था, या आप कह लें कि एक जस्ट टूर दिया था। अब ट्रैक बदल गया। अब क्या है? فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی, نبی آئیں گے, کتابیں آئیں گی, پیغام لینے والے دینے والے آئیں گے, پھر جس نے ہدایت کی پیروی کی, مان لیا, اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, مراد یہ کہ اس کو واپس جنت مل جائے گی, اور اگر کفر کرو گے, تکذیب کرو گے, تو جہنم کے ساتھ ہی بن جاؤ گے۔ یہ وہ ڈے ون کا وعدہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی اسی لیے الہادی ہے, ہدایت دینے والا۔ اب ہوا کیا کہ انسانیت شروع میں تو اس پیغام پہ تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اور وہ توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب ایک تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اختلافات ہوتے گئے, شرک ہوتے آگا, اور نبی آتے گئے۔ پہلے نبی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے, اور وہاں سے جو تار جڑا تو ہوتے ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ یہ سارے انبیاء کرام کس طرح سے اس ہدایت کے راستے کے راہی تھے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا, شرع لکم من الدین, اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا, ما وصا بہ نوحا, جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا, والذی اوحینا الیک, اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی, وما وصینا بہ ابراہیم و موسی و عیسی, اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم موسی اور عیسی علیہ السلام کو, کیا کہا تھا, ان اقیم الدین, یہ کہ قائم کرو دین, اسٹیبلش کرو دین کو, اور ولا تتفرقوا فی, اور اس میں تفرقے بازی نہ کرو, اس میں اختلافات نہ کرو, ہاں لیکن کبر علی المشرکین, بڑا برا لگتا ہے مشرکوں کو, کیا, ما تدعوہم الی, جس چیز کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ کس کی طرف بلاتے تھے نبی؟ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کہا کافروں کو بہت برا لگتا ہے جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ, اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے چن لیتا ہے, ویہدی الیہ من ینیب, اور اس کو ہدایت دیتا ہے جو کہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک میسج دیا ہے, اور وہ کیا کہ اس دنیا میں تم وہ گولڈن چین ہو کہ جو پہلے دور میں نبیوں پہ رک جاتی تھی۔ اللہ نے ہدایت کا پیغام کیسے دیا؟ اللہ کی ذات, फिर बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते थे, हर नबी के पास वही जिब्राइल के जरिए से गई, और उसके बाद नबी, एंड दैट्स इट। कोई एक जगह नबी आता था तो कोई दूसरी जगह। आज तो कम्युनिकेशन इतना तेज है कि आप देख सकते हैं कि ग्लोब पे बैठे लोग हमारी बात अभी भी सुन रहे हैं। हम इस कमरे में, इस हॉल में लोग पूरे ग्लोबली बैठे सुन रहे हैं ना। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था, जैसे हम ओक्लाहोमा सिटी में इस वक्त बात कर रहे हैं। हो सकता है कि एक नबी ओक्लाहोमा स्टेट के लिए हो, दैट्स इट। एक दूसरा नबी डलस में हो सकते थे, तीसरे नबी हो सकता है ह्यूस्टन में। इस तरह छोटी छोटी जगहों पे नबी होते थे। और नबी क्या थे? बस कैरियर थे, एम्बेसडर्स थे, अल्लाह का पैगाम देते थे। होता रहा लोगों को हिदायत की बात पहुंचती रही। वो फितरत के अहद में बंधा हुआ बच्चा जो दुनिया में अलस्तु बिरब्बिकुम वाला अहद लिए हुए आया था, वो आता गया और उसने रब को माना। लेकिन इर्द गिर्द की इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी कि उसने उनको इधर उधर डाल दिया। नबी आते समझाते लोगों, अल्लाह के बंदे बनो, गुना छोड़ दो, खराबियां ना करो, ये वो, और ठीक हो जाते थे लोग। जिसके नसीब में हिदायत थी वो मान जाते, गो के वो बहुत थोड़े थे। वो जो थोड़े से बचते थे ना, अल्लाह सुबहान ताला उनको वक्त के नबी के साथ निजात दे देते थे। अब जरा जहन साथ साथ रखिएगा, पहले दौर में तरीका क्या था इकामत दीन का, कि नबी के साथ वो लोग जो ईमान लाते थे उनको बचा लिया जाता था, और बाकी लोगों को या तो डुबो दिया गया पानी में, कौम नूह डुबो दी गई, आसमान से और जमीन दोनों से पानी निकला और डूब के सब खत्म हो गई कहानी, एक नई दुनिया बसाई गई। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदमे सानी भी कहा जाता है। फिर इसी तरह आगे दूसरे नबी आते रहे और आते रहे। पहली कौम के बचे हुए लोग जो चोजन पीपल होते थे उस दौर में, उनके ही बच्चों में थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद नाखल्फ किस्म के लोग आने लगते। जैसे शम्मा से दूर हो तो अंधेरा बढ़ता है ना, इस तरह हिदायत के सोर्स से दूरी भी इंसान को अंधेरों में डाल देती है। तो वो लोग जो आज की कौम के बचे हुए थे, यानी कौम समूद के जो लोग जो अजाब से बचे, वो कितने अच्छे लोग होंगे, तभी तो बचे। कुछ अरसा गुजरा, उन्हीं के अंदर फिर शिर्क आ गया, कौम आद की सूरत में दुनिया में आए और उन पे अजाब डाल दिया गया। ये तो है माजी की बातें, इस पे तो हम लंबी बात नहीं करेंगे, इस पे अलग से बातें मौजूद हैं, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आज हमारी बात हो रही है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है। पहले जो काम नबियों से लिया जाता था, आज के दौर में वो काम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया जाएगा। हम छोटी बात नहीं सुन रहे, हमारा ताल्लुक किसी छोटी हस्ती से नहीं है। हर नबी अपनी जगह खूबसूरत इंसान भी था और अल्लाह ने नबियों को चुना था, लेकिन जो शान नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उससे तो दुश्मन भी आज इनकार नहीं करते। हम मुसलमान तो क्या कहेंगे, आज भी इस गए गुजरे दौर में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेके रोते हैं। ये अलग बात है कि बात उनकी ना माने, लेकिन उनका उनके नाम की नात पढ़ते हुए में हाल पड़ जाता है। उस नबी की उम्मत को कहा गया कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतर उम्मत हो, बेहतरीन नेशन हो। और दूसरी बात उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, तुम अपने लिए नहीं आए इस दुनिया में। तुम्हारे इस दुनिया में आने का मकसद बहुत बड़ा है। मैं अक्सर इस जुमले को पढ़ने के बाद एक जुमला बोलती हूँ कि हर माँ ही अपने बच्चों को पालती है ना, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी औरत का जवानी में शौहर फौत हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर जब वो रोती धोती सर फोड़ती है तो लोग उसे क्या कहते हैं? कहते हैं देखो सब्र करो, अब तुमने इन बच्चों के लिए जीना, कहते हैं ना। ये फर्क है ना, तुमने इन बच्चों को पालना, यानी एक हैप्पी फैमिली होम स्वीट होम में शौहर भी कुछ काम कर रहा है, कुछ बीवी भी कर रही है, दैट्स गुड। वो औरत और दूसरी वो औरत कि जो सिर्फ माँ ही नहीं बाप भी है, सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट होते हुए जब वो अपने बच्चों को पालती है तो आपको उसकी जिंदगी का क्या तसव्वुर आता है। मेरे जिन में 2-3 लफ्ज आते हैं, सबसे पहले कुर्बानी, फिर मेहनत, फिर जान फिशानी, फिर अनथक मेहनत, कि वो ही भोली भाली नाजुक सी लड़कियां जो माँ बाप के घर में बास दफा पानी भी नहीं उठ के पीती, वो आयरन वुमेन बन जाती है। पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है गम के बाद कि इंसान इतने बड़े बड़े सदमे सह जाता है। फिर वो कहती है मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी, पता नहीं दूसरा बाप इन बच्चों के साथ क्या करेगा, लिहाजा मैं इन बच्चों के लिए जीऊंगी, कम अज कम ये बच्चे अपने ऊपर आ जाए। अब आप उस एक औरत के उस मिजाज को समझिए कि वो बच्चों के लिए पैदा की गई। तो अल्लाह कहते हैं उखरिजत लिन्नास, ओ मुसलमानों तुम लोगों के लिए पैदा किए गए। इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हमें टाइटल दिया है कि मैं कहती हूं कि अगर हम मुसलमानों को आज इसका यकीन भी आ जाए ना, सिर्फ यकीन, तो हम सर सजदे में रख के और रातों को सोना कम कर दें, खाना कम कर दें, अपनी जात को जरूरियात पे ले आए, कूते ला यमूत हो हमारी जिंदगी में, बस गुजारे के लिए खा लो और बाकी अपना तन मन धन अपना वक्त अपनी स्किल्स अपनी एफर्ट्स इस काम के लिए लगा दें। लेकिन दुख की बात है कि उम्मत मुस्लिमा आज बल्कि एक अरसे से इस मकसद को भूल गई, अपने मकसद वजूद को ही भूलती जा रही है, और अब तो उसको ये याद भी नहीं कि उसकी जिंदगी का हकीकी नस्बुल ऐन क्या है, इसको क्यों पैदा किया गया। तो आज अजीज साथियों हम सब इस उम्मत को वही भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए बैठे। अगर आज की इस गुफ्तगू के बाद हम में से कोई भी ख्वाबे गफलत से चौंक गया और पूरी कुव्वत से उठ पड़ा कि आज पता चले मैं आई क्यों, तो यकीन कीजिए कि इस रास्ते में जितनी मुश्किलात भी आए या आई सर आंखों पे, इससे खुशकिस्मती की कोई और बात नहीं। और अगर हम में से जितने साथी इस वक्त बात सुन रहे हैं, सिर्फ इतने ही, बाकियों को छोड़ दें, सिर्फ हम आज यहां से एक कमिटमेंट लेके उठें, एक सोच लेकर उठें, उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए जीना है। फम ममा यन फोन ना सुफयम को सूरत रात में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा। अगर इस असूल पे हमने अमल कर लिया ना तो हमारा काम करने का अंदाज भी बदल जाएगा। बात समझिएगा, मजमूई तौर पे तो उम्मत मुस्लिम आज इकामत दीन का मकसद ही भूली हुई है, लेकिन कुछ लोग जो दीन के नाम पे काम कर भी रहे हैं, वल्लाही अल्लाह हमें उसमें से ना करें। मैं हो सकती हूं उसमें, क्योंकि मैं भी आपके सामने एक दीन का ही काम करने बैठी हूं, लेकिन इल्ला माशाल्लाह आज दीन का काम करने वाले को भी ये नहीं पता कि मैं इकामत दीन के लिए उठाऊं। क्या होता है भी करेंगे बात, जरा पहले अपने आप को झंझोड़ लें, थोड़े से शॉक्स दे लें। आज हम सिर्फ सवाब के लिए बरकत के लिए फर्ज समझते हुए, पढ़ा हुआ भूल ना जाए इसलिए, हमने को बदगुमानी करते हैं कि कोई इसलिए काम करता है कि मशहूर हो जाए, कोई पैसा कमाए। वल्लाही आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, जब थोड़ा सा दीन जिंदगी में आता है फिर आग लगती है, तड़प लगती है। लेकिन दुख की बात जो मैंने बड़े करीब से महसूस की कि आज दीन का नाम लेने वालों, सवाब और लंबी लंबी इबादात करने वालों के भी दिल में दीन का हकीकी दर्द नहीं है। बात समझने की है, दीन का दर्द होना और बात है और दीन का काम करना बिल्कुल और बात है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक छोटा सा दर्स ह्यूस्टन में दिया, ह्यूस्टन था या फोर्ट वर्थ में दिया, मेरा हेल डेलस ट्रिप में था। इतनी तेजी से दिन बदल रहे ना कि मुझे खुद नहीं याद रहता मैं कहूं, लेकिन उसमें एक जुमला ये था कि हकीकी ईमान क्या है, मैं कैसे कहूं कि मेरे अंदर ईमान है। तो उसका जवाब यही था कि ईमान लाने के बाद ईमान की हिफाजत का गम लग जाना, ये ईमान है। मोमिन लाशौर नहीं होता, बेशौरा नहीं होता। फिर मैंने उनको मिसाल दी कि जैसे साफ कपड़े पहन लें तो एकदम फीलिंग आती है ना कि अब साफ कपड़े हैं, इस पे दाग ना लगे। गम लगता है ना अगर एक धब्बा भी लग जाए, पसीना ना आ जाए नए कपड़ों में। इसी तरह ईमान को दाग ना लगे, ईमान को पसीना ना आए। घर साफ कर लिए, कितने केयरफुल होते हैं, कदम भी उठाते हुए सोचते हैं कि कहीं निशान ना पड़ जाए कारपेट पे। ईमान तो अपने आप को बहुत साफ सुथरा करने का नाम है। तो बात का खुलासा क्या है کہ جب امت مسلمہ دین کا کام بس برائے دین کا کام چونکہ کرنا ہے چونکہ کیا ہو گیا, اور وہ مولوی صاحب ہیں نا مسجد کے ماشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھاتے ہیں, اور وہ بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں, اور وہ ناظرہ شام کو پڑھاتے ہیں, اور وہ فلاں ہیں وہ گرامر پڑھا رہے ہیں, وہ ہیں وہ تجوید کرا رہے ہیں. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس پلان کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھی ساتھی, اپنے شہر کی بہت زیادہ دین کے نام پہ کام کرنے والی سسٹرز. میں نے ان سب سے جب بات کی تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ دین کا کام کیوں کر رہی ہیں؟ یقین کیجئے الا ماشاءاللہ کوئی بدگمانی نہیں, آپ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے, نہ میرے ذہن میں اس وقت کوئی ان کی برائی مقصود ہے, کیونکہ کوئی کسی بھی نیت سے کرے وہ ان سے تو بہرحال بہت اچھا ہے جو کچھ نہیں کر رہے. کسی نے کہا کہ پڑھا ہے تو پڑھانا ہے, کسی نے کہا ثواب کے لیے, کسی نے کہا اپنا فریش ہو جائے, کسی نے کچھ. میں نے کہا کیا کرتی ہیں, کیا کرا رہی ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں نے گرامر سیکھی ہے تو میں گرامر پڑھا رہی ہوں. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کن کو گرامر پڑھا رہی ہیں؟ کین یو بیلیو اس سسٹرز کے حلقے میں وہ گرامر پڑھا رہی ہیں کہ اللہ کی بنا لفظ گرامر سن کے جو بھاگ جائے. میری اس بہن نے کیوں نہ سوچا کہ دین تو مجھے کسی اور چیز کا تقاضا کرتا ہے, پہلے میں دیکھوں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, تعلق باللہ ٹھیک ہے, اس کا اسلام اے ٹو زی ٹھیک ہے, دل میں اللہ کی محبت کا بیج ہے نہیں ہے, اس کی نماز ٹھیک ہے, روزہ ٹھیک ہے, اس کو بھی نرمی. گرامر تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے 10-12 سپاروں تک, کہاں ایک نئے مدد, صرف اس لیے کہ میں نے پڑھی ہے تو میں نے تو پڑھانی ہے, پھر کہتے ہیں بھاگ جاتے ہیں لوگ. کسی سے پوچھا کہتی تجوید. ایک ساتھی ایسی تھی جو قرآن کا کورس کر رہی تھی, کورس, اور آپ کو تھا کورس کے اندر جو مین انگریڈینٹ ہوتا ہے نا وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, اور تفسیر کا جو ہمارے پاس موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ دل بدل جائے, اپنے مقصد حیات کا اپنا مقصد حیات سمجھ آ جائے. ایک ایسی بھی سسٹر تھی جو کسی دوسری دین والی سسٹر کے کہنے پہ, موٹیویٹ کرنے پہ کہ میری کلاسوں میں آؤ, میری پہ آؤ. کیوں؟ کہنے لگی کہ تمہارا تو قرآن ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو تم نے تفسیر پڑھ کے کیا کرنا ہے. پھر کیا ہوا پتہ نہیں, 5-6-10 آئی ڈونٹ نو کتنے سپارے وہ اسٹوڈنٹ پڑھ چکی تھی. آج بھی میرے دل میں ہوک اٹھتی ہے ان کا سوچ کے, اتنی وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی ان پڑھ, کم پڑھی ہوئی تھی, بالکل اسٹریٹ فارورڈ. مجھے آج بھی ان کے وہ جوش والے لفظ یاد آتے ہیں جب انہوں نے ہمارا, ہم لوگ پہلے پریپ سیمسٹر کراتے ہیں سبیل الجنہ سے, تاکہ جب جس دن قرآن ہاتھ میں کھلے تو کچھ پتا تو ہو پہلے سے. پریپ سیمسٹر اس نے کیا, پھر انہوں نے کورس میں داخلہ لیا, اور وہ اتنی سیدھی سادی تھیں کہ آ کے سناتی ہوتی تھی گھر میں جو باتیں ہوتی تھی. میں نے کہہ دیا میاں کو بس اب 18 مہینے کے لیے چولہا بند. میں نے کہا اللہ کی بنا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ تو ہمارا اسکول بند کرا جائیں گے آ کے. بعض لوگ محبت میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو لوگ نفرت میں بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہہ دی کوئی روٹی شوٹی نہیں پکنی گھر میں, خود ہی پکاؤ. اللہ اکبر. خیر وہ ان کے کورس سے پہلے کی باتیں تھی. کلاس میں پہلے آ کے بیٹھتی تھی. ہمارے ناروے میں آپ کو معلوم ہے کہ گرمی سردی, مطلب بہت ایکسٹریم ویدر ہے, گرمی تو نہیں ہے سردی بہت ہے, سنو میں آتی تھی, جوتوں کے بھی ڈر تھا. اچھی بھلی آ رہی تھی اور ایک دم رکی. بعد میں پتہ چلا کیا ہوا کہ وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں, لیکن تجوید سیکھنے کہیں چلی گئی, کیونکہ جس سے تجوید سیکھنے کی اس نے اتنا ان کا برین واش کیا کہ توبہ توبہ, تم لوگ تو یہاں یہ آپ کو تو یہ قرآن اتنا پڑھا رہے ہیں, تجوید پہ تو اتنا زور ہی نہیں دیتے, اور رول تمہیں تو وہ اتنے موٹے موٹے لفظ بول رہی تھی. تو پھر اب کیا ارادہ کیا, نہیں پہلے اب میں گرامر تجوید سیکھوں گی پوری ان سے, تو پھر کورس بعد میں کروں گی. آج میری اس بات کو میرا خیال ہے کہ 3 سال ہو گیا ان کے اس فیصلے کو. آپ کو پتہ کیا ہوا, قرآن کا کورس تو چھوٹا, تجوید بھی نہیں ہوئی. واللہ چند دن تجوید کی, وہ مشکل لگی ادھر ہو کے جب وہ موٹیویشن جو دل کا پانی تھا جس نے دل کو نرم رکھنا تھا وہ نہ ملا, جب قرآن کی تفسیر سننا چھٹی تو موٹیویشن رہے گا؟ آج تک ہم نے اتنے سال زندگی ہو گئی, ہم نے کیوں نہیں تجوید کے رول سیکھے؟ کیونکہ ہمارے اندر موٹیویشن نہیں تھا. ہاں جس دن آپ قرآن سیکھنے آتے ہیں پھر آپ کورسز کرتے ہیں, آپ کو بنیادی غلطیاں اپنی تجوید کی سمجھ آتی ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اور بھی اچھی تجوید کرنی ہے. تو جدھر آپ کا وہ علم کا پانی کٹا آپ کو دنیا یاد آ گئی, گھر بنانا ہے تو آپ اتنی سال ادھر چلے گئے وہ چلے گئے. تو بات جو کر رہی تھی وہ کیا ہے کہ آج امت مسلمہ میں سے اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کام بھی کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک بہت بڑا مشن دیا تھا, आप देखिए कि अगर कोई आपको इस पूरे शहर में किसी एक काम का ठेका दे दे, ठेका समझते हैं ना, आपको दे दे मोनोपली के आपकी है, आपने ही ये काम करना है, ऑनर के साथ दे दे, कितनी खुशी से करेंगे। हम कहेंगे सिर्फ मैं ही ये काम कर सकती हूँ। कोई कहे हाँ भाई, यदि इस मुल्क की गवर्नमेंट कहे कि हाँ यू मुस्लिम्स ओनली यू कैन डू दिस, आप ही कर सकते हैं, तो हम कितना खुश हो, भाई आपने मैं इस काबिल समझा। वो कहेंगे हाँ आप लोग बहुत अच्छी तरह ये करेंगे, और आप एशियन मुस्लिम्स तो बहुत ही अच्छा ये काम करेंगे। मेरा ले हम सर पे पांव रख के चल पड़े और हम वो काम करने लगे कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। अल्लाह का ट्रस्ट तो इससे बहुत बड़ा है कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ओ लोगो तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई, लेकिन शर्त है तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म दोगे। ये है बेहतरीन बनने की बातें, फर्स्ट कंडीशन तामुरूना बिल मारूफ, लोगों को नेकियों की दावत दो। मारूफ क्या होता है? ऐन रा फा इसका रूट है, उर्फ उर्दू में बोलते हैं मारूफ, तारुफ पहचान, जानना पहचाना, आरिफ का लफ्ज़ सुना होगा। तो मारूफ कहते हैं जानी पहचानी चीजों को, जिसको इंसान की अकल फितरत और शरीयत ओके कह दे। मसलन सच बोलना, किसी को बताना पड़ता है कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। सबको पता है कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई फर्क है? कभी आपने दुनिया में किसी मजहब का कोई बंदा ऐसा देखा जो ये कहे कि सच बोलना बहुत बुरी बात है? तो ये मारूफ बात है, जानी पहचानी, वेल नोन। पहली बात क्या है कि वेल नोन किस्म की नेकियां करो, तामरून बिल मारूफ, और तामरून में अमर है, अमर कहते हैं डूज को, ऑर्डर, यू शुड डू, या तुम्हें इसका हुक्म देना है, किसका? मारूफ का। सिंपल सा भी समझ लें इसको। दूसरा काम वतन हौन अनिल मुनकर, और तुम रोकोगे मुनकर से। तो तन हो ना मैं तो क्या लफ्ज आता है, और भी उर्दू में भी आता है ना, नहीं ना, ना का लफ्ज जो कहते हैं नो, नहीं, उर्दू में हम लिखते हैं ना मैंने नहीं किया, तो वो नहीं भी यही है जो तन हो ना में छुपा हुआ है। क्या पता चला? कि तुम लोगों को मुनकर से रोकोगे, तन हो ना अनिल मुनकर। मुनकर क्या होता है? नून काफरा, उर्दू में बोलते हैं लफ्ज इनकार। चलिए मुनकर का एक लफ्ज तो आप सबने सुना होगा, मुनकर नकीर। कौन से हैं वो फरिश्ते जो कब्र में हमारा हिसाब लेंगे? एक का नाम है मुनकर और एक का है नकीर। क्यों कहते हैं उनको मुनकर और नकीर? इतने भयानक चेहरे, अजीब चेहरे होंगे कि इंसान उनको पहचानेगा ही नहीं, वेरी स्ट्रेंज फेसेस। समझ आए? आप देखे मुनकर क्या हुआ, हर वो चीज जिसको अकल शरीयत और फितरत बुरा कहे। शराब पीना, किसी मजहब में शराब को अच्छा कह सकता है? सूद लेना, जुआ, किसी को मारना, किसी का जुल्म के साथ माल हथियार लेना, नहीं है ना? बस यही मुनकर है। तो उम्मते मुस्लिमा को तामुरूना बिल मारूफ और तनहौना अनिल मुनकर, दो काम दिए। कभी आप इन दो लफ्जों में डूब के देखें तो आपको इसमें क्लीनिंग दिखेगी। तामुरूना बिल मारूफ के डू द गुड डीड्स, खूबसूरत काम करो, और तनहौना अनिल मुनकर है बुरी चीजों को रोको। आज के दौर में जो प्रोफेशनली क्लीनिंग होती है वो कैसे होती है? आप देखिए पहले तो वो ट्रैश उठाते हैं ना सारा, गंदगी उठाई, वैक्यूम किया, चीजें चेंज की, फिर उसके बाद वो खूबसूरत से स्प्रे करते हैं ना। आप देखें जब सफाई होती है तो उसके 2-3 दिन तक घर में बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है, बहुत अच्छे अच्छे डिटर्जेंट्स होते हैं ना। बस उम्मते मुस्लिमा को यह करना है कि जहां भी कोई मुसलमान रहे, अब मैं हूं उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द, हूं ना, आप भी हैं, मैं हूं इस जगह पे खड़ी, मुझे क्या कहा, देखो इधर तुम्हारी इर्द गिर्द को गंदगी तो नहीं बड़ी हुई, उठा लो इट, ये टिश्यू भी उठा लो, ये पेपर भी उठा लो, ये तुम इधर से ये तिनके भी उठा लो, खाना भी गिर गया उठाओ, शाबाश, कमन कुछ नहीं होता, साफ करो, ये भी उठा लिया, अब क्या कहा कि इधर थोड़ा स्प्रे कर दो। यानी उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह सुबहान तआला ने अपने माहौल को क्लीन करने का हुक्म दिया। जरा मेरे साथ साथ चलिए, अगर मैं तेज बोलूं तो मुझे मुंह बना दीजिएगा जरा फेस ऐसा कि जो मैं समझ जाऊंगी फिर। लेकिन आप देखिए कि आप अपने आप को इमेजिनेशन में लाएं, इस्लाम कहां से शुरू हुआ था? मक्का से। फिर कहां पहुंचा? मदीना। फिर कहां गया? तबूक की तरफ। वहां से गया तो मुल्क शाम, ईरान, रूस, गया ना। مسلمانوں نے ہر دور میں کیا کیا، جہاں جہاں گئے وہاں تدخیر کی، کلیننگ کی. مسلمانوں کی ہسٹری گواہ ہے کہ جب ریئل مسلمز جب ریئل تھے، آج کل تو ہم فیک ہیں نا، آج کل ہر چیز آرٹیفیشل ہے موسٹلی. ایون ہم اصلی چیزوں کو بھی آرٹیفیشل کر کے کھاتے پیتے ہیں، فریش چیزوں کو فریز کر کے کھاتے ہیں. آم آرنج نہیں کھائیں گے لیکن ہم اس کا سکویزڈ اور پیسچرائز قسم کا جوس پی لیں گے، کچھ ڈالتے ہیں اس میں، کچھ نکالتے ہیں اور پھر انجیکشن لگا لگا کے تصویریں دکھاتے ہیں، ہاں کرتے ہیں نا. آج کے دور میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہو گئیں کہ نیچرل اور آرگینک چیزیں کم ہو گئیں، لیکن جب ریئل مسلمز تھے، اور وہ کون سے تھے؟ صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا لوگوں کا کہ جو بالکل نیچرل تھے، آرگینک تھے. آج دوبارہ لوگ آرگینک فوڈ پہ آ رہے ہیں، مہنگا ہے دوسروں سے. تو بھئی ہماری بھینس بری ہے جو پاکستان میں گاؤں میں دودھ دیتی ہے، اس سے نیچرل کیا ہوگا، رائٹ؟ لیکن ہم یہاں ڈبے کا پی کے خوش ہوتے ہیں. آج انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ڈبے والے میں کتنے نقصان ہیں، اس میں وائٹامن ڈی بھی ڈالی ہوئی ہے، اس کو اتنی تیز ٹیمپریچر پہ انہوں نے گرم کیا ہوا کہ اس کے سارے فیٹ کے جو مالیکیولز ہیں وہ اس میں ڈیزالو ہو گئے. پاکستان میں آپ فریش گائے یا بھینس کے ایک گلاس دودھ کو پیتے ہیں نا، اس میں سے صرف 5% چربی آپ کے جسم میں جاتی ہے، اور جو 95% چربی ہے نا وہ آپ کی ایکسکریشن میں نکل جاتی ہے، یعنی پیٹ صاف ہو جاتا ہے اپنے لفظوں میں کہہ لیں، جو بہت اچھی بات ہے. نیچرلی انسان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی اور کچھ نہیں ہوتا. یہ جو آج ہم یہاں دودھ پیتے ہیں نا 100% ہول ملک، آپ کہتے ہیں وہ ہول ملک نہیں ہے، وہ ہول فیٹ ہے. یہ میں آپ کو بڑی دلیل سے کہہ رہی ہوں، آپ پوچھنا چاہیں تو بعد میں اس کی دلیل بھی لے لیں. یہ جتنا دودھ گرم کر کے بوائل کرتے ہیں نا پیسچرائزنگ میں، اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو جا کے بوائل کرتے ہیں کہ جو دودھ کے اندر فیٹ کے مالیکیولز ہیں وہ سب ٹوٹ کے اس دودھ میں مل جاتے ہیں. اب آپ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں نا تو 100% فیٹ آپ کی باڈی کو لگتی ہے. جب ایک فریش ملک گائے کا یا دودھ پیتے ہیں اس میں صرف 5% لگتی ہے، باقی ایز اٹ از نکل جاتی ہے. اب انسانیت نے چینجز کی نا، پہلے لگا بہت فائدہ ہوا، اب لگا بہت نقصان ہے، پھر اس میں 2% نکالو. اور وہ جو بڑے لوگ ہیں کہتے ہیں اس پانی کے پیسے دینے ہیں، کہہ دی کہ اس میں 2% فیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں نا وہ دودھ پتلا سا ہو جاتا ہے، لیکن اب لوگ دوبارہ ادھر آ گئے. اب یہ سب کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنی مرضیاں کی. یہ تو کھانے پینے کی باتیں، ہم اس پہ حلال حرام کی کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس نے ایک اس کا سسٹم بنایا تھا کہ تم ایک رب کو مانو، اس کے آگے چلو، اور اسی کے ساتھ چلنے کا نام دین ہے. آگے ہم تھوڑی سی بات اس پہ مزید کر لیں گے. امت مسلمہ سے کہا کہ تم لوگوں کو نیچرل وے آف لیونگ سکھاؤ، لیکن کیسے سکھائیں ہمیں تو خود نہیں یاد رہا. صحابہ کرام کو یاد تھا، وہ جہاں گئے انہوں نے صفائی کی. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم، نام تو ہم نے سنا ہی ہوا نا سندھ کے ناطے سے، جب وہ سامنے آیا تھا نا تو اس کو صرف مسلمز کے ووٹ نہیں ملے تھے، نان مسلمز کے بھی ملے. ہندو جو کہ راجہ داہر کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے تم آؤ، کیونکہ تمہاری صورت میں ہم نے ایک دیوتا دیکھا ہے. جتنا تم انصاف کر رہے ہو اور جتنا تمہاری تعلیمات ظلم سے پاک ہیں، اتنی کسی اور کی نہیں. کہتے ہیں کہ آج بھی ہندوؤں نے اس کا ایک بت بنا کے اپنے مندروں میں رکھا ہوا ہے، یا اس وقت رکھا ہوا تھا، پوجتے تھے. کہتے تھے اتنی خوبیوں والا شخص انسان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. چلیے چھوڑیے محمد بن قاسم کو، سندھ کو چھوڑیں، ہمیں کیا لگے، ہم اپنی بات کرتے ہیں. آج ہم مسلمان کتنے ہیں؟ شاید بلینز میں. کہاں کہاں ہیں؟ آپ دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیے، گرین جھنڈے جہاں دکھیں، سبز لینڈ دیکھیں، گھاس جہاں دیکھتے ہیں، سارے سبز ملک مسلمانوں کے. جہاں جہاں مسلمان پہنچے اس آیت کی روشنی میں، وہاں وہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسلام. بات واضح. حضرت عمر فاروق کے بعد یہ ترقی رک کیوں گئی؟ اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جھانک کے دیکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے 2 سال اور اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق کے تھے. ان 12 سالوں میں اس وقت جو بڑے بڑے ملکوں کے نام ہم جانتے ہیں نا، مسلم ملک، ایران، عراق، مصر، شام، لیبیا، یہ سب مسلمان ہو چکے تھے. آپ بھی تو سوچتے ہوں گے یہ کیسے ہوا. اگر آپ نے گلوب کو دیکھا ہے تو کہاں مکہ اور مدینہ، اور ادھر جا کے آج دیکھیے ملیشیا، इंडोनेशिया, क्या मैंने और आपने अपनी पिछली 25, 30, 35 साल जिंदगी में किसी मुल्क को मुसलमान होते देखा, इल्ला एक छोटी सी रियासत? मैं तो कहती हूँ कि 1947 के बाद शायद आपने कोई प्रैक्टिकली कोई इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क नहीं देखा होगा। हालात ने रूस में से कुछ मुसलमान रियासतें निकाल दी। आज ये तरक्की क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आज मुसलमानों ने तामरून बिल मारूफ और तनहून अनिल मुनकर का काम छोड़ दिया। हम जहां गए उन जैसे हो गए, वही काम करने लग गए। आप जाइए अमेरिका में, बड़े शौक से जाइए, फाइनल अर्द लिल्ला, जमीन अल्लाह की है, आप भी अल्लाह के हैं, जमीन भी अल्लाह की, आप रहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, चाइना में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, नॉर्वे में जाइए, मोस्ट वेलकम। शर्त एक ही है कि आप अल्लाह के बंदे बन के जाइए, तामरूना बिल मारूफ और तनहौना अनिल मुनकर का काम लेके जाइए। ये आपका मेरा मनहज हो अगर, तो मैं कहती हूं दुनिया के सबसे करप्ट मुल्क में भी चले जाइए, इंशाल्लाह आपको वहां जाना नुकसान नहीं देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे डॉक्टर्स कहां जाते हैं, जहां जरासीम फैले होते हैं। वायरसेस वाले इलाके में डॉक्टर्स जाते हैं, औरों को नहीं जाने देते। क्यों? अगर सारे डॉक्टर्स ही बीमारियों वाली जगहों से निकल जाएंगे तो उनका इलाज कौन करेगा? उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह ने डॉक्टर बनाया था। जैसे डॉक्टर्स जिस्म की इस्लाह करते हैं ना, जिस्म में फासद मादे जमा हो गए, निकाले रखे किए लिए, उम्मत मुस्लिमा से कहा कि तुम दुनिया में जहां गंदगी देखोगे ना, जाके शाबाश सफाई शुरू कर देना। कैसे? अपने इखलाक से, अपने किरदार से। जैसे एक दरख्त है, दरख्त क्या करता है? माहौल की गंदगी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन देता है। थोड़ी सी साइंस तो मेरे लिए हम सब नहीं पढ़ी हुई है ना। ऑक्सीजन देता है ना, तो आप दरख्तों के पास जाएंगे तो आपको क्या फील होगा? एकदम ठंडक का एहसास, आंखों को फ्रेश लगती है। क्यों कहते हैं कि दरख्त उगाओ? और कार्बन हम छोड़ते हैं, दरख्त वो ले लेता है। बस अल्लाह मुसलमान को कहता है तुम भी एक दरख्त बन जाओ, अपनी सोसाइटी का ताफुन लो, गंदगी लो और वहां खैर दो। ये कब होगा? जब मुसलमान असली मुसलमान होगा। बात वाज़े, असली होगा फिर ही देगा ना। आपका वैक्यूम क्लीनर अगर ठीक है तो तभी सक करेगा ना मट्टी को, और अगर उसके अंदर क्लॉग्स आ जाएं, उसमें कुछ मट्टी आ चुकी है, उसके अंदर कुछ रेशे फंस गए, तो वो थोड़ी देर काम करेगा लेकिन सफाई नहीं होगी और थोड़े दिन के बाद जल जाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा के साथ अफसोस की बात है कुछ इसी किस्म के हालात हुए। पहली तो बात है कि पता ही कोई नहीं करना क्या, फिर दूसरी बात ये नहीं पता करना कैसे, और फिर तीसरी बात ये भी नहीं पता कि रुकना कहां है। देखिए क्या करना है, कब करना है और कितना करना है, ये तीन काम बताने के लिए नबी आते हैं। नमाज पढ़ो, कब पढ़ो, कितनी पढ़ो, कैसे पढ़ो, कौन बताएगा? नबी बताएगा, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे नमाज पढ़ने का हक है, जैसे तुम मुझे देखते हो। अपनी मर्जी से नेकी का कोई भी मेयार बना लेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब हम नबी के तरीकों पे चलते हुए इस दुनिया में अल्लाह का काम करते रहेंगे, अल्लाह के बंदे बन के रखे रहेंगे। जब ये मकसद याद था मुसलमानों को, अल्लाह के नबी की एक बात याद रही। अब ये बात कहने लगी ना, बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम कौन हो? कजालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास। नबी सल्लम का सब बिल्कुल आखिरी सफर था हज्जतुल विदा, एक ही हज किया आपने पूरी जिंदगी में। फिर जब सब लोग अरफात में जमा हो गए तो क्या कहा कि लोगों ये बताओ, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? हल बल्लगत, डिड आई कन्वेट द मैसेज, क्या मैंने मैसेज कन्वे कर दिया? सहाबा ने जोश से कहा, यस जी नबी सल्लम, हाँ यस, आपने नास बल्लगत व अदईता, पहुंचा भी दिया और हक अदा कर दिया। फिर अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे और आसमान की तरफ देख के आपने कहा, अल्लाहुम्मा शहिद, ए अल्लाह गवाह रहना, پھر اپنی امت سے کہا کہ تم میں سے ہر موجود شخص جو اس وقت یہاں موجود ہے یہ بات غائب تک پہنچا دے, یعنی دین کی بات جو تم نے میرے سے زندگی میں دین سیکھا, کیونکہ اللہ کے نبی کی اب واپسی کے اثرات تھے, 3-4 مہینے کے بعد دنیا سے گئے. یہ ذی الحج کا موقع تھا, تو ذی الحج کے محرم سفر اور ربیع الاول 2.5-3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, اب وہ ایک دلسوز کہانی ہے, کیسے ہوا سیرہ کے سیشنز میں جا کے سننا چاہیں تو سن لیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا 3rd day جب گزرا, 3 days, 4th day سے مدینہ صحابہ سے خالی ہونے لگا. غور سے سمجھیے, مدینہ میں ان کی یادیں تھیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ روشن, تابناک اور خوبصورت دن وہ تھا جس دن طلع بدر الینا, وہ ایک 14th کا چاند نمودار ہوا, من سنیت الودا, جب اللہ کا نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا. انسانیت ترس رہی تھی, پیاسے تھے انسان کہ کوئی ایک لیڈر مل جائے جو ہم ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے, یہ بکھری ہوئی رسیوں کو ڈوریوں کو ایک خوبصورت رسی میں ڈال دے. لیڈرز کے بغیر امت بکھری ہوئی, آج بھی یہی حال ہے, امت بہت ہے لیڈر کوئی نہیں ہے, بھیڑ بنے ہوئے ہم لوگ, ہم صرف اس وقت ایک ہجوم ہے, بلین بھی وہ کام نہیں کر پا رہے جو چند لوگوں نے کر دیا تھا. اتنی خوشی تھی نبی کے آنے کی, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سیاہ اور تاریک دن مدینہ میں نہیں تھا, مدینہ کی گلیاں رو رہی تھیں. لشکر اسامہ واپس آ چکا تھا, اللہ کے نبی کی بیماری کی خبروں نے ان کو واپس بلا لیا. ابو بکر صدیق اگر نہ اس وقت سنبھالتے تو عمر فاروق تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے. کیا آج اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور کہا کرے اپنے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اگر اللہ کے نبی کا نام آئے اور ہم درود نہ پڑھیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے لعنت کی بد دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. عمر کہتے تھے اگر کسی نے یہ کہا تو عمر کی تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی. کہا نہیں فوت ہوئے, یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اور 30-40 راتیں ہو گئی تو پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ موسیٰ فوت ہو گئے, اور پھر 10 دن بعد آ گئے. عمر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے واپس, پھر اس وقت کس نے سنبھالا؟ ابو بکر نے. ممبر سجایا پھر گئے اور سورۃ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جو آج سے تقریباً 11 سال پہلے غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہو چکی تھی, 11-11.5 سال. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, لوگو محمد کچھ نہیں مگر ایک رسول تھے. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ, اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے. اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, اگر وہ مر گئے یا مار دیے گئے یعنی شہید ہو گئے یا تبھی مر گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے, دین چھوڑ دو گے؟ اچھا پھرتے ہو تو جاؤ پھر. وَمَن يَنقَلِبْ, جو بھی پھرتا ہے, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اس آیت کو سن کے عمر فاروق کو پھر سمجھ آئی کہ اب نبی نہیں ہے, اللہ نے اتنے سال پہلے تیاری کروا دی تھی. میں نے غلط بول دیا, سن غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی جو سن بولیے 3 ہجری میں ہوا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 میں, تقریباً 7.5 سال پہلے اللہ نے اس آیت کے ذریعے امت مسلمہ کو تیار کر دیا تھا کہ یہ لیڈر نہیں رہے گا, کوئی بھی نہیں رہتا, ہمیشہ ماں باپ نہیں رہتے, استاد ہمیشہ آپ کے سر پہ نہیں رہیں گے, بڑا نہیں رہے گا, آپ کو بڑا بننا پڑے گا. جو اپنے استادوں اور اپنے ماں باپ کی زندگی میں بڑا نہیں بنتا, بعد میں ٹھوکرے اس کو بڑا بناتی ہیں, تھپیڑے پڑتے ہیں پھر. وہ بچے جو بڑے لاڈلے ہوتے ہیں پھر جب زمانے کی چوٹیں پڑتی ہیں نا, پھر جا کے ان کو سمجھ آتا ہے کہ ماں کتنی بڑی ڈھال تھی اور باپ کتنی بڑی بنا تھی. کہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس وقت کچھ حالات ایسے بن گئے تھے, ابن مسعود کا غالباً قول ہے کہ کبھی تم نے کسی کشتی کو بغیر وہ دیکھا ہوگا ملاح کے, ادھر ڈولتی ادھر, کہتے ہیں اس وقت ہمارا حال یہ تھا, سمجھ کچھ نہیں آ رہی, فتنوں نے سر اٹھا لیا. کچے پکے ایمان والے ایسے وقتوں میں پھر پہنچ جاتے ہیں اپنے نفع نقصان کی باتوں پہ, مرتد ہو گئے, کوئی زکوٰۃ کے مائیں نہیں, کوئی مسلمہ کذاب نبی بن کے کھڑا ہو گیا, لشکر اسامہ پہ جھگڑا شروع ہو گیا, क्या क्या अबू बकर के ऊपर चोटें पड़ी कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अगर पहाड़ के ऊपर वो सदमे टूटते जो नबी के बाद अबू बकर पे टूटे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन उन फितनों के आगे दीवार कौन बना? एक कमजोर इतना दुबला शख्स कि जब वो तहबंद बांधते थे तो जिस्म पे गोश्त ना होने की वजह से तहबंद गिर जाता था, नीचे होता था और टखनों पे आ जाता था। तो फिर अबू बकर रोते थे कि मैं उन लोगों में से हूं कि जिनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, देखेगा नहीं, उनको पाक नहीं करेगा, क्योंकि मेरे तो टखनों पे मेरी शलवार या मेरा आजार आ गया। और अल्लाह के नबी तसल्ली देते थे कि नहीं अबू बकर, आप उनमें से नहीं हो। किस चीज ने अबू बकर को खड़ा किया? अबू बकर की दौलत मार नहीं, ईमान ने। जब भी मुसलमान उभरेंगे, याद रखिए अपनी कमजोरियों में उभरेंगे। जो हालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के वक्त थे, अल्लाह की कसम खा के कहूंगी, दिन रात का ये काम है। आपने तो सिर्फ अपना शहर देखा है ना, आप कहते हैं यहाँ इतने मुसलमान हैं, इतने हैं, ये मस्जिदें हैं। शायद अल्लाह इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों से मिलवा रहा है। मुझे तो सिर्फ दिन ब दिन वो हदीस मेरी आंखों में रहती है कि अल-खल्कु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंभ है। मुझे सारी दुनिया अपना खानदान लगती है, मुझे सब अपने लगते हैं। मैं हर मुल्क में घूम के जा जहां मुझे अल्लाह ले गया अभी तक, लेकिन मैंने एक ही चीज देखी कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा खोई हुई भेड़ों की तरह, मकसद से दूर, पता ही कुछ नहीं, करना क्या है, जाना किधर है, लॉस्ट, समझ नहीं आ रहा करें क्या। जिसका जिधर सर समाता है वो काम कर रहा है। और दुख की बात क्या है, इकामत दीन तो कोई बात में करेगा, वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, आप फिक्र ना करें, जहां ये लफ्ज आ रहा है ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त जरा हम अपने हाल पे तो थोड़ा रो लें कि इकामत दीन जो फर्ज है, हर एक पर उसकी हैसियत के मुताबिक फर्ज है। ये फर्ज किफाया नहीं है कि शहर में एक इमाम साहब बैठे हुए खुतबा देने, और पिछले 10 साल से आपके शहर में कोई 4-6 कोई एक अरब कोई अजम कोई फलां सिस्टर बैठी हैं, वो दरसो तदरीस कर रही हैं, आप कहते हैं शुक्र है हमारे शहर में जी एक खाला जी दर्स देती हैं। सच बताएं, क्या आपने अपने पाकिस्तान से लेके अमेरिका में आने तक यही कॉन्सेप्ट नहीं देखा आज मुसलमानों में? चंद गिनती के लोग हैं जो कर रहे हैं दीन का काम, वो एक अलग बहस है, वो किस नहज पे कर रहे हैं। मैं तो नहीं अपने आप को सोचती कि मैं भी ये काम कर सकती हूं, मैं तो नहीं समझती कि ये मेरा भी करने का काम है, हाथ पांव पड़ जाते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमने उस मकसद को समझा नहीं। हमारे मुआशरे में दीन का तसव्वुर ही बिगड़ा हुआ है। और दुख से कहूं, बहुत दुख से, कोई तनकीद आदत नहीं है, ना किसी के ऊपर कोई तंज है, जुबान ही नहीं खुलती, लेकिन दर्द से भरी हुई बात है कि आज दीन का काम करने वाले, दीन के लिए बुलाने वाले, दीन के नाम के गुनगाने वाले भी दीन के असल तसव्वुर से दूर हैं। वल्लाही उनको भी नहीं पता कि एक तरफ तो हम इतनी नेकी का काम कर रहे हैं और एक तरफ हमसे इतना बड़ा गुनाह हो रहा है। आपने सुना होगा, हम में से शायद ही कोई उस वक्त इतना बड़ा हो, या शायद कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो होंगे, 1979 में खबर फैली थी कि खाना काबा पे कब्जा हो गया, शायद आप में से किसी को याद हो। और जैसे कि वही कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा, लोगों को एकदम लगा कि अमेरिका ने हमला किया होगा। जो ही ये खबर नशर हुई, आपको पता है कि दुनिया में मुसलमानों में इतना वबाल उठा कि हर एक ने जहां उनको अमेरिकन सेंटर को दिखा उस पर जाके तोड़फोड़ शुरू की। रावलपिंडी में अमेरिकन सेंटर का वाकया, अगर कभी उस दौर की कोई अखबार खोल के देख लीजिए, खबरें भी छपी थी, तस्वीरें भी थी, जज्बात में फिफरे हुए मुसलमान जो यंग भी थे वो गए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की। और आपको पता है वापसी पे जब वहां से आए तो उनके हाथ में क्या था? शराब की बोतलें, उस सेंटर से पकड़ी लेके आ गए। जिस दीन के दिफा के लिए निकले, जिस दीन के नाम पे तोड़फोड़ की, खुद नहीं पता कि वो दीन क्या। आज हमारा दुख ही है, तीतर और बतेर बटेर, आधे इधर आधे उधर। मुबल्लिग खतीब बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वक्त पड़ता है तो जाली कागज बनते हैं। किसी ने अपनी किसी की बात सुन रही थी मैं, कहा कि बहुत अच्छे खतीब भी हैं, सब कुछ है, और एक डॉक्टर है उनके पास पहुंच गए, क्या है जी कि वो मुझे जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना दे। कोई वजह थी दुनिया भी फायदे की या क्या थी? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्या आप कह रहे हैं? मैं तो नहीं बनाऊंगा। अरे कर दो ना, फिर ये है और वो है। अब आप बताइए, क्या उन खतीब ने या उन इमाम ने कभी ये कुरान की आयत नहीं पढ़ी के लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। लेकिन उनको पता है कि ये पढ़नी इसलिए कि 10 हर लफ्ज पे 10 ने किए, रमजान में कुरान भी तरावी भी, अमली जिंदगी में जब जरूरत पड़ी झूठ बोल दो, ये इस्लाम नहीं है। एक और किसी की बात सुनी कि खुद कहते हैं कि मैंने उनकी जुबान से सुना हुआ था, तकरीर में हदीस कोट करते हैं कि राशी वल मुर्तशी खुला हुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। और कहते हैं कि बाद में एक निजी गुफ्तगू में उन्होंने मुझे खुद बताया कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा पड़ गया और मेरे ऊपर तारीखें डलती, मैं थाने में गया। मैंने उन्हें कहा देखो भी रमजान आ रहा है तो मैं तो बड़ा मसरूफ हूं, पढ़ना पढ़ाने के काम है, तो मेरी तारीख रमजान के बाद की डालना। तो वो जब नहीं माने तो मैंने उसको एक कायदे आजम दिया, तो उसने मेरी तारीख रमजान के बाद की डाल दी। बात समझ रहे हैं, फर्क है ना। आज दीन का मिजाज बदला हुआ है। अल्लाह कहते हैं नकीमुद्दीन, दीन कायम करो। इसके दो मानी है कि दीन कायम नहीं हुआ तो कायम करो, और अगर दीन कायम हो जाए तो उसको कायम रखो। ये एक बड़ा दुख में मुब्तला करने वाला टॉपिक है। हर बंदा ना तो इसको कर सकता है और हर बंदा सुन भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि आप कितने इस वक्त अपने आप को बोझल महसूस कर रहे हैं। शायद आपके लिए ये बातें ओवरडोज ना हो जाएं, मुझे गम लग गया, लेकिन मैं महसूस करती हूं कि आपको मैं आती इधर एक लच्छेदार दर्द सुनवाती। कभी कभी आना होता है बंदे को, फजीलतें ही सुना के चले जाना चाहिए ताकि लोग बाद में याद करें कि आपने जो फजीलतें सुनाई थी ना, बस उसके बाद से तो दिल झूम गया। और जन्नत की हूरें और जन्नत के कपड़े और खाने और पीने, तसल्लियां दिलासे, लेकिन मेरी जुबान नहीं खुलती। मैं हमेशा अल्लाह से एक दुआ करके आती हूँ, क्या मेरे मालिक मेरी जुबान से फालतू बातें ना निकलवाना और एक एक वो लफ्ज निकालना कि जिसकी जरूरत है मुझे भी और हम सबको। और इस वक्त तो मुझे लगता है कि हम सब नमाजें पढ़ के भी दीन कायम नहीं कर रहे, इसलिए कि दीन सिर्फ नमाज में नहीं कायम होता। देखिए जो लफ्ज है ना अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, जब आपको कहा जाता है ना नमाज कायम करो, उसका क्या मतलब होता है कि खड़े रहो? नहीं, नमाज को उसकी सीधी फॉर्म में रखो, पढ़ो उसको सही तरह से, तादील करो उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ो, ठहर के पढ़ो, उसके अंदर अल्फाज ठीक हो, अदायगी ठीक हो। लेकिन क्या इकामत दीन पांच वक्त की नमाज का नाम है? नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला में कहता है कि दीन का मतलब यह है कि तुम्हारी मईशत, मईशत में इस्लाम को लाओ, माशरत में लाओ, सियासत में लाओ, निजी जिंदगी में लाओ, तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में भी इस्लाम कायम हो, तुम्हारे किचन में भी हो, तुम्हारे बेडरूम में भी हो। दीन को सिर्फ अगर मस्जिद में कायम करना होता क्या मुश्किल था। संडे के संडे वो भी जाते हैं चर्च में दीन कायम करने, सैटरडे वो भी जाते हैं, हम जुम्मे के जुम्मे चले जाएं। मुझे आप ये बताइए, आज उम्मत मुस्लिमा की मस्जिदों की हालत 7 days a week क्या होती है? अगर आप किसी भी मस्जिद से करीबी ताल्लुक रखते हैं, और मेरा गुमान है कि आप में से अक्सर लोगों का होगा, अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह की रहमत कह लें या शायद इसी से दर्द देना था, जब से शादी हुई, शादी से पहले पाकिस्तान में कोई लफ्ज मस्जिद को इतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखता। वहां वो मुल्लाओं का काम है, मस्जिद की सफाई, तौबा करो, हम कोई जमादार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट में रहते हुए मैंने ये चीज बहुत देखी है, यंग्स खास तौर पे। मेरे अपने हस्बैंड का फेवरेट काम है, मस्जिद में जाते हैं तो वैक्यूम शुरू कर देंगे, ट्रैश उठा देते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई मर्द ट्रैश उठाए, तौबा करें, उसका तो सारा वो नवाबपन ही खत्म हो जाए। लेकिन यहां हम बातें आप देखते हैं, और मस्जिदों से ताल्लुक पे लोग खुश होते हैं, इवन मस्जिद में अजान देना, इमामत कराना, खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक रहा है मस्जिद से। लेकिन आप अपने नोट्स में एक 7 दिन का कैलेंडर बना ले, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और आप सिर्फ एक हफ्ता अपने गली मोहल्ले की किसी करीबी मस्जिद की 5 नमाजों में आने वाले नमाजियों के नंबर नोट करवा ले। खुद ना करें, किसी इमाम साहब को ड्यूटी दे दें, आप करें ये काम। कोई एक आप में से बंदा अल्लाह का ऐसा चार्ट बना ले, सबको कापियां दे दें, ये इस मस्जिद उस मस्जिद उस, बस इमाम साहब के साथ एक मामला कर लेंगे, फजर से लेके ईशा तक, मंडे टू संडे, आप एक हफ्ते के नमाजियों का नंबर नोट करें, फजर में कितने, जोर में कितने, असर में कितने, और फिर दूसरी तरफ जुमे की नमाज के नमाजी देखिए। मेरा ख्याल है जो हमने करना है वो आप में से बहुत सारों को भी पहले ही पता है। फजर में कितने होते हैं? शायद गिनती के 4, 6, 10, 12। जोहर और असर काम पे हैं जी, ये कैसे हो सकता है काम छोड़ के नमाज पढ़ने आए? मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ इतना बड़ा अफसर, अब मैं निकलूं जी? मैं तो डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर, मैं तो फलां, मैं तो फलां। मस्जिद में वो जाएं जो फारिग हैं, घरों में बैठे हैं, पेंशनें खा रहे हैं, जाए नमाज पढ़े। क्या आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है? जुमे में क्या इल्ला माशाल्लाह। अब तो ये भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी भी अहमियत कम हो गई, लेकिन चलें, आज भी इस गए गुजरे दौर में मुसलमान जुमे की नमाज का एहतमाम करते हैं। बाहर तक भरी होती हैं जुमे के दिन नमाज मस्जिदें। बाज मस्जिदों में लोगों ने बताया कि पार्किंग लॉट में भी चटाइयां बिछाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मस्जिद की एक्सपेंशन करें, अब इसके लिए फंड रेजिंग है, चंदा लेंगे देंगे। मैंने कहा ये बताइए कि बाकी दिनों में क्या है? नहीं, वो तो फिर नहीं है। मैंने कहा आपको फंड रेजिंग उस दिन करनी चाहिए, चंदा उस दिन मांगना चाहिए जब ये डेली की रूटीन हो जाएगी। एक दिन क्या मसला है, आप टेंट ले लें भाई। और अल्लाह की हुक्म से जुम्मा होता कितनी देर का हमारा? शायद ही आखिरी रकत में ब्रदर्स आते हैं और कुछ जुम्मे खुतबे से आखिर में मिलते हैं ताकि दो फर्ज पढ़ें और बाहर बैठते हैं ताकि रश न और निकल जाए। इतने से इहतमाम के लिए आप मिलियन मिलियन लगा देते हैं, सारा हफ्ता मस्जिद की दीवारें नहीं रोती होंगी, कहां दीन कायम हुआ? इस्लाम कहता है कि दीन को कायम करना है हर मामले में कायम करो। तुम्हारी सियासत, तुम्हारी मईशत, तुम्हारे घर में जाके पता चले ये मुसलमान का घर है, तुम्हारी तिजारत में जाके पता चले ये मुसलमान की तिजारत है, तुम्हारी बच्ची को देख के पता चले ये मुसलमान बच्ची है, तुम्हारे बच्चे को देख के पता चले ये मुसलमान का बच्चा, तुम्हारे रिश्ते नातों में पता चले, तुम्हारे इंसानी ताल्लुकात में पता चले। आज आप देखिए कि हम दीन की दूसरी बातें तो करें सो करें, उसको तो छोड़ दें, आप देखिए कि हमारे ताल्लुकात कितने गैर इस्लामी हो गए, उसमें दीन कायम नहीं हुआ। वाह, अल्लाह के हुक्म से कोई रिश्ता होके छूट जाए और अगर तलाक हो जाए, यानी मंगनी नहीं रिश्ता टूटे, यानी शादी होके टूटे, शायद ही अगले 8-10 साल तक दो खानदान आपस में फिर मिले, चाहे वो सगे भाई और बहन के घर रिश्ता हो। इस्लाम कहता नहीं, जब अल्लाह के दीन की हदें हैं उसके अंदर रहते हो, काम करो, करो नहीं करते छोड़ दो। क्यों? हर जगह आप देखिए उम्मत मुस्लिमा इस वक्त भटकती हुई दिख रही है। शादी में इस्लाम कायम है, मंगनी, शादी, उपटन, मेहंदी, पीला जोड़ा, नीला जोड़ा, ये कौन सी फिक्र निकाह में हमने पढ़ी? ये कौन सा दीन तुमने कायम किया? हमारा दीन क्या सिर्फ हमें नमाज का तरीका सिखाता है? और मजे की बात देखिएगा, हैरत की बात है, पूरे कुरान पाक में एक भी जगह A to Z नमाज का तरीका नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। वुजू का तरीका नहीं, इशारे मौजूद है, नमाजों के औकात नहीं लिखे हुए, इशारे मिलते हैं कि ये जोहर असर है, ये मगरिब, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस हमारे लिए उतनी ही अहम है जितना कि कुरान है। कुरान में कोई बात कह दी जाए या हदीस में कह दी जाए, बेशक बिल्कुल सेम चीज है, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उसी कुरान के अंदर निकाह, तलाक, वरासत, वसीयत के मसाइल कदरे तफसील से, पीरियड्स की बातें उसमें है। और आपको पता है कि अगर सिर्फ नमाज रोजे की बात के लिए कुरान होता ना, एक छोटा सा बुकलेट काफी है था, जिसको आज की जुबान में आप ब्रोशर कहेंगे। ये 114 सूरतें, 6666 आयतें किस लिए थी? कि तुम दीन को कायम करो। हमारा दीन तो इतना खूबसूरत दीन है कि हजरत अनस की गालिबन या हजरत इब्ने मसूद की, दोनों की बहुत आपस में मिलती हैं, इब्ने उमर होंगे, कोई एक इन तीन में सहाबियों में से था, किसी यहूदी ने इनको आर दी। मदीना में जब रहते थे तो यहूद साथ थे, कहने लगे हाँ, इन्होंने किसी जगह बताया कि नबी सल्लम टॉयलेट में जाते हुए, यानी कज़ाए हाजत के लिए बैठने का तरीका सिखाते हैं कि बाएं पांव पे बोझ डालो और इस तरह बैठो। तो उसने मजाक उड़ाया, अच्छा जी, तुम्हारा नबी तुम्हें टॉयलेट में जाने के भी तरीके बताता है, यानी उसने मजाक उड़ाया। तो इन्होंने पूरे फखर और पूरे यकीन के साथ कहा, हाँ हम फखर से कहते हैं कि अल्लाह ने हमें वो लीडर दिया कि जो हमें टॉयलेट में जाने का तरीका भी सिखाता है। ये दिन है हमारा, सोने से लेकर जागने और जागने से लेकर सोने तक का तरीका बताता है। हमारे दीन ने हमें कहीं खाली नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी के आखिरी दिनों की हदीस है कि मैं लोगों तुम्हें एक ऐसे दीन पे छोड़ के जा रहा हूं कि लैलुहा का नहारीहा, जिसकी रातें भी इसकी सुबह की तरह रोशन है। सहाबा किराम कहा करते थे, अगर एक परिंदा भी उड़ता हुआ हमारे पास से गुजरे तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे नबी ने हमें उसके बारे में भी बताया। इतना मुखलिस कायद हो किसी का, इतना दर्द रखने वाला हो कि दिन तो दिन रातों में भी वो अपने लोगों को सिखाने के लिए हरीस हो, और आज उस उम्मत का हाल ये हो कि वो भटकी हुई भेड़ों की तरह भेड़ चाल का शिकार है। आपको था कि भेड़ की क्या आदत होती है, कभी पहाड़ी पे चढ़ते हुए किसी एक भेड़ यानी शीप्स जो होती हैं उसका पाँव फिसल जाए ना तो वो गिरती है, उसको गिरता देखकर दूसरी भेड़ें भी खुद को गिरा देती हैं। ये है भेड़ चाल, उनके पीछे चलते हैं जिनका जिनको खुद अभी कुछ रास्ता नहीं पता। रात को मुझसे राहिला ने एक सवाल पूछा, फायदे की खातिर आप सबको बताती हूँ क्योंकि बीच में साथ साथ ही बातें होती जाएं तो बेहतर है ताकि हम अपने लिए नसीहत लें। कहने लगी कि रमजान आने वाला है, मैं चाहती हूं कि मैं अपने नॉन मुस्लिम नेबर्स के लिए कुछ करूं, तो मैं क्या करूं? इनके जहन में कोई भी आइडियाज थे? मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने नॉन आज मेरी नजर में हो सकता है गलत भी हो, लेकिन एक मेरी जो हल्की फुल्की सी मुझे बात समझ आई है दीन की, मेरी नजर में इस वक्त नॉन मुस्लिम्स को कुछ सिखाने पढ़ाने और बताने से पहले जो काम है ना वो ये है कि अपने और उनके बीच के गैप को खत्म करें, झिझक दूर करें, उनकी खौफ दूर करें कि हम कोई आदमखोर नहीं है, हम कोई खूनहार किस्म की मखलूक नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि मीट दी नेबर्स के नाम पे आप अपने इर्द गिर्द के सब नेबर्स को किसी दिन ब्रंच पे खाने पे इस तरह से बुलाएं कि आप और आपके साथ आपकी कुछ और भी जो भी साथी हैं, आपको भी सबको बता रही हैं इस वक्त, ये बताने का मकसद भी यही है कि आप अपनी दो तीन चार छः दस फैमिलीज मिलके अपने अपने सारे दोस्तों को मिलाएं, आप लोग भी आएं और नॉन मुस्लिम्स को भी दावत दें और उन्हें कैसे जस्ट मीट द नेबर्स, कोई दीन की उसमें बात नहीं है। फिर आप क्या करें कि आप अपने घर में कर रहे हैं या जहां भी करें उसका सेटअप ऐसे दिखाएं उनको जो एक आइडियल मुस्लिम घर का होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा खाना पकाएं जैसा वो पसंद करते हैं, जो उनको पसंद है, जो आपको भी पसंद है, शुरू से ही उनको दिखाएं कि ये मेंस का डोर है, ये सिस्टम।